हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा वृंदावन बिहारी, राधा वृंदावन बिहारी, राधा वृंदावन बिहारी, राधे राधे। जय वृंदावन धाम, जय वृंदावन धाम, वृंदावन धाम जय राधे श्याम, जय राधे श्याम। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। श्री श्री राधाष्टमी महामहोत्सव की जय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्णं स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं। श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते, गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो इस राधाष्टमी कथा में आप सबका स्वागत। तो आपके कृपा आशीर्वाद से हम कुछ राधा रानी की महिमा वर्णन करने का कुछ प्रयास करेंगे। तो सबसे प्रथम आज इस श्लोक को हम दोहराएंगे। ये श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला चौथा अध्याय 71वां श्लोक है। कृष्ण प्रेम भावित यार चित्तेन्द्रिय काय कृष्ण प्रेम भावित यार चित्तेन्द्रिय काय कृष्ण निज शक्ति राधा क्रीडार सहाय कृष्ण निज शक्ति राधा क्रीडार सहाय कृष्ण प्रेम भावित यार चित्तेन्द्रिय काय कृष्ण निज शक्ति राधा क्रीडार सहाय कृष्ण प्रेम भावित यार चित्तेन्द्रिय काय कृष्ण निज शक्ति राधा क्रीडार सहाय आप में से कोई कृष्ण प्रेम भावित यार चित्तेन्द्रिय काय कृष्ण प्रेम भावित यार चित्तेन्द्रिय काय भावित यार चित्तेन्द्रिय काय दूसरा लाइन बोलिए अभी कृष्ण निज शक्ति राधा क्रीडार सहाय कृष्ण निज शक्ति राधा क्रीडार सहाय माताजी कृष्ण प्रेम भावित यार चित्तेन्द्रिय काय कृष्ण निज शक्ति राधा क्रीडार सहाय तो इसका श्रील प्रभुपाद जी द्वारा हम तात्पर्य देखेंगे तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जिनका मन तो हर माइंड सेंसेस एंड बॉडी आर स्टीप्ड इन लव इन विद कृष्णा तो जिनका मन इंद्रिय चित्त इंद्रिय काय संपूर्ण देह कृष्ण के प्रेम में ही विभावित है और वो कृष्ण की निज शक्ति है और कृष्ण को उनके लीला संपन्न करने में सहाय करती है तो प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में राधा रानी कृष्ण की तरह संपूर्णतः दिव्य है और कोई ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि उनमें कोई भौतिकता का कुछ लेश भी है तो निश्चित ही रूप से वे तो बद्ध जीव की तरह है नहीं मुक्त जीव की तरह भी नहीं है और नित्य पार्षदों में भी सबसे श्रेष्ठ है तो उनका देह और इंद्रिय जो है वो भौतिक नहीं है प्राकृत नहीं है तो वो संपूर्णतः दिव्य है और उनका शरीर और मन ये भी आध्यात्मिक ही है और उनके इंद्रिय भी आध्यात्मिक हैं तो इस प्रकार उनका देह मन और इंद्रिय पूर्णतः कृष्ण के प्रेम में उज्ज्वलित होते हैं तो वे स्वयं लादिनी शक्ति है भगवान की लादिनी कराए कृष्णे आनंद आस्वादन लादिनी रा द्वारा करे भक्तेर पोषण तो एक उनका कार्य है कृष्ण को आह्लाद प्रदान करना और दूसरा कार्य है कि हम जीवों को प्रेरित करना कृष्ण की सेवा करने के लिए तो ये दोनों कार्य द्वारा कृष्ण को ही आह्लादन राधा रानी करती है इसलिए उनका नाम लादिनी लादिनी है लादिनी रे सार अंश प्रेम सार लादिनी का सार है प्रेम प्रेम का सार है भाव भाव का सार है महाभाव महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुरानी सर्व गुण खनी कृष्ण कांता शिरोमणि तो सारे कृष्ण की विविध जो गोपियां हैं उनमें शिरोमणि कौन है शिरोरत्न श्री राधा जी हैं तो वे केवल ही केवल कृष्ण के को आनंद प्रदान केवल राधा रानी दे सकती है और बाकी सब जो देते हैं वो राधा रानी की कृपा से बाकी सब भी कृष्ण को आनंद प्रदान कर सकते हैं केवल राधा रानी की कृपा का लेश प्राप्त करके तो कृष्ण कुछ भी किसी का भी आस्वादन नहीं कर सकते जो कृष्ण का अंतर्भूत रूप से भिन्न है। तो सूर्य सबको प्रकाश देता है, लेकिन सूर्य स्वयं प्रकाश किसके कारण है? उसकी प्रकाश शक्ति के कारण ही स्वयं भी प्रकाशित है और जगत को भी प्रकाश देता है। वैसे ही कृष्ण सबको भक्ति करने के लिए प्रेरित किसके द्वारा करते हैं? राधा रानी के द्वारा करते हैं। और आनंद किससे आस्वादन करते हैं? राधा रानी के द्वारा। तो ये इसको समझना हमको अत्यंत आवश्यक है। तो इसलिए राधा कृष्ण ये एक ही हैं। राधा कृष्ण एक तनु दुई एक आत्मा दुई देह धरी, अन्योन्य विलसे रस आस्वादन करी। तो चैतन्य चरितामृत में बतलाते हैं कि राधा कृष्ण शक्ति और शक्तिमान होने के कारण एक ही है। जैसे सूर्य और सूर्य की किरणों को हम एक बोलते हैं या अलग बोलते हैं? एक ही बोलते हैं। सूर्य की किरणों को अगर उसको स्वीकार ना किया जाए तो सूर्य का ही अस्तित्व नहीं रहेगा, और सूर्य का अस्तित्व ना स्वीकार किया जाए तो किरणों का भी अस्तित्व नहीं रहेगा। तो इसलिए दोनों का ही स्वीकार करना पड़ेगा, सूर्य का भी और सूर्य के किरणों का भी। वैसे ही राधा रानी और कृष्ण दोनों का स्वीकार करना होगा। संदिनी शक्ति से कृष्ण, तो भगवान की जो चित्त शक्ति है उसके बारे में हम और चर्चा करेंगे। उससे क्या होता है? तो भगवान का के जो नित्य शाश्वत तनु का गठन होता है, तो भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं इसको विस्तार में पीठ सत्ता, यानी सारा आध्यात्मिक जग भी कृष्ण की संदिनी शक्ति से आता है। और जो नाम सत्ता रूप सत्ता, उनका सबका अस्तित्व जो है कृष्ण की संदिनी शक्ति से होता है। और केवल अस्तित्व होने से काम नहीं बनेगा। केवल पुत्र का शरीर है लेकिन पुत्र के साथ कुछ आदान प्रदान नहीं है, तो क्या वो संपूर्ण रूप से संबंध प्रस्थापित नहीं हो पाएगा? तो संदिनी क्या करती है, मान लो पुत्र या कन्या का रूप है लेकिन पिता और माता तभी जाकर उस रस का आस्वादन रस का आस्वादन कर पाते हैं जब भी कुछ आदान प्रदान होगा, कुछ भावनाओं की आदान प्रदान जब भी होगा तभी होगा। तो ये भावना की आदान प्रदान कौन करवाता है? ये लादिनी शक्ति है, जिसमें लादिनी के द्वारा भावना की आदान प्रदान हो जाती है। तो कृष्ण स्वयं की जो चित्त शक्ति है, अंतरंगा शक्ति, जिसका लादिनी नाम है, उससे राधा रानी को प्रकाशित करवा रहे हैं। जो सर्व आकर्षक कृष्ण को भी आकर्षित कर देती है। इसलिए हाँ, कृष्ण का नाम मदन मोहन है, सबके हृदय को मथने वाला कौन है? मदन है, काम है। लेकिन काम के भी हृदय को मथने वाले कौन है? मदन मोहन है। और राधा रानी कौन है? मदन मोहन मोहिनी, उनको भी आकर्षित करने वाली। तो इसलिए नो वन कैन मैच श्रीमती राधा रानी इन द ट्रांसेंडेंटल पास्ट टाइम्स ऑफ श्री कृष्ण। तो कोई भी राधा रानी की तुलना नहीं कर सकता कृष्ण की लीला में सहाय बनने के लिए। तो सर्व प्रमुख जो सहायक हैं वो श्री राधा हैं। तो इस प्रकार हम राधा रानी के तत्व को कुछ अंश में समझ सकते हैं, जिस अंश में हमको गुरु वैष्णव की कृपा प्राप्त होती है उसी अंश में हमको राधा रानी गूढ़ तत्व है उसका कुछ प्रत्यय आना चालू हो जाता है। तो अभी ये दूसरी प्रार्थना है जो श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी की है, जिसको हम एक बार दोहराएंगे। अनाराध्य राधा पदाम्भोज रेणुम अनाश्रित्य वृंदाटवीं तत्पदांकाम असंभाष्य तद्भाव गंभीर चित्तान कुतः श्याम सिंधो रसस्यावगाहः अनाराध्य राधा पदाम्भोज रेणुम अनाश्रित्य वृंदाटवीं तत्पदांकाम असंभाष्य तद्भाव गंभीर चित्तान कुतः श्याम सिंधो रसस्यावगाहः
तो श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी स्तवावली में राधा रानी के चरण में प्रार्थना कर रहे हैं। क्या प्रार्थना कर रहे हैं? अनाराध्य राधा पदाम्भोज रेणुम, राधा रानी के चरण कमलों की धूलि को उसका आराधना किए बिना, या फिर अनाश्रित्य वृंदाटवीम तत्पदांकाम, राधा रानी के चरण कमलों से अंकित सुशोभित जो वृंदावन की भूमि है उसका आश्रय लिए बिना, असंभाष्य तद्भाव गंभीर चित्तान, राधा रानी के प्रति जिनका गंभीर भाव उदित हो चुका है उनकी सेवा करने का, उनके साथ संभाषण किए बिना, ये तीन चीज किए बिना क्या नहीं होगा। कुतः श्याम सिंधो रसस्यावगाहा, श्याम यानी कृष्ण नाम का जो रस सिंधु है उसमें स्नान कैसे होगा अगर ये तीन चीज नहीं करेंगे तो। कौन सी तीन चीज नहीं करेंगे? अनाराध्य राधा पदाम्भोज रेणुम, राधा रानी के चरणों की धूलि जो है उसकी आराधना नहीं करेंगे, उनके वृंदावन धाम का आश्रय नहीं करेंगे, या फिर उनके जो महान भक्त हैं श्रील प्रभुपाद जी, विश्वनाथाचार्य ठाकुर और सारी पूरा गुरु शिष्य परंपरा है, सारे वैष्णव हैं, उनका अगर उनके द्वारा जो लिखी हुई पुस्तकें हैं उनको नहीं पढ़ेंगे, या फिर जो वृंदावन के रसिक भक्त हैं उनके द्वारा कथा नहीं सुनेंगे हम, तो फिर हमारा कथम श्याम सिंधो रसस्यावगाहा, तो श्याम नामक जो सिंधु है कृष्ण सिंधु में हमारा अवगाह वो रस का आस्वादन कैसे होगा। तो ये कह रहे हैं, तो ये दो प्रार्थना हम सोचे। पहला ये श्री प्रभुपाद जी इसके ऊपर तात्पर्य भी दिए हैं, कृष्ण प्रेम भावित यार चित्तेंद्रिय का है, कृष्ण निज शक्ति राधा क्रीड़ार सहाय। तो संभव है तो इसको हम कंठस्थ कर सकते हैं। तो पश्चात अभी नहीं। तो श्रील प्रभुपाद जी द्वारा एक कुछ हम श्रीमती राधा रानी के विषय के बारे में हमको कितना गंभीर होना चाहिए, इसलिए श्रील प्रभुपाद जी द्वारा कुछ चेतावनी हमको दी गई है। किसी भी महान वस्तु के बारे में जब भी चर्चा होती है तो उसके बारे में हमको आदरपूर्वक भाव होना अत्यंत आवश्यक है, नहीं तो क्या होगा, अपराध होने का बहुत संभावना है। तो जिससे हमारी प्रगति रुक सकती है, तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी हमको कॉशन करते हैं या फिर सावधान कर रहे हैं। तो एक परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज अपने प्रभुपाद स्मृति में, प्रभुपाद मेमोरीज अगर आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। तो प्रभुपाद मेमोरीज में हिज होलीनेस जय पताका स्वामी महाराज वो कहते हैं कि एक बार एक लेक्चर होने के बाद प्रभुपाद जी राधा रानी के बारे में कुछ तो बतला है लेक्चर में, और अंत में महाराज बताते हैं कि वो प्रभुपाद जी से प्रश्न पूछने लगे, राधा रानी का कैसा, ये कैसा, वो कैसा। तो अंत में प्रभुपाद जी ने उनका कहा, हु आर यू टू आस्क क्वेश्चन अबाउट राधा रानी, और समथिंग लाइक दैट, हु डू यू थिंक यू आर टू आस्क क्वेश्चन अबाउट राधा रानी, मतलब आपको क्या लगता है आप कौन हो कि आप राधा रानी के बारे में प्रश्न पूछ सकते हो। तो ये तो हमको बतलाने के लिए प्रभुपाद जी ये भी कहे थे कि परम पूज्य जय पताका महाराज कि ये चैतन्य महाप्रभु के पार्षद है करके एक जगह पे प्रभुपाद जी ने ये भी कहा था, लेकिन हम सबको समझाने के लिए बतला रहे हैं कि ये विषय को हमको कितना गंभीरता से लेना चाहिए। और प्रभुपाद जी एक यमुना माता जी भी एक बतलाती हैं कि एक बार कैसे प्रभुपाद जी का राधा कृष्ण के प्रति क्या भाव था, तो सदैव सेवा करने का भाव था, और उनको थोड़ा सा भी कुछ दुख ना पहुँचे। एक बार विग्रहों की प्रतिष्ठापना होने वाली थी राधा कृष्ण, और जो हम जानते हैं कि कैसे जिस दिन स्थापना होती है कैसी हड़बड़ी मच जाती है, कुछ जुगाड़ बनाया जाता है, कुछ तैयार नहीं है तो उसको तुरंत तैयार बना के, जिसे मेक शिफ्ट कहते हैं, ऐसे कुछ तो जुगाड़ बनाया जाता है। तो ऐसा ही ऑल्टर जो है भगवान का, जो देवगृह है वो लकड़ी का बनाया जाता है, वो ठीक से बना नहीं था, किसी को मालूम नहीं था, लेकिन आज प्रतिष्ठापना है बोल के उसको देवगृह पे रखा गया, और अंदर उसके अंदर राधा कृष्ण की प्रतिष्ठापना होने वाली है। तो प्रभुपाद जी देख रहे थे पूर्ण समय राधा कृष्ण के तरफ, और देखा कि एक जो खंभा है, चार खंभे पे टिका हुआ था वो, एक जो खंभा है वो ऐसा निकल रहा है, वो सरक रहा है, तो प्रभुपाद जी ने क्या किया, तुरंत दो स्टेप्स थे, दो स्तर थे उसके ऑल्टर तक पहुंचने के लिए, तो प्रभुपाद जी ने अपने लेफ्ट हैंड से, बाएं हाथ से सब बाजू कर दिया जो सामने कुछ भी था, तुरंत चढ़े। इतने यमुना माता जी कहते हैं कि बिजली के गति से, मतलब प्रभुपाद जी इतने तुरंत चढ़े, दोनों बाजू में सब कुछ बाजू में कर दिया, अपने बाएं हाथ से राधा रानी को पकड़ा और दाहिने हाथ से वो जो कंबा जो गिर रहा था उसको पकड़ा। और यमुना माता जी कहते हैं कि, और बाद में प्रभुपाद जी के जो कपोल के ऊपर ऐसा एक घर्म का एक बिंदु दिखाई दिया कि प्रभुपाद जी कितना डर गए थे कि राधा रानी को कुछ हो ना जाए। तो यमुना माता जी कहते हैं कि इस प्रकार से प्रभुपाद जी का केवल विग्रहों के प्रति नहीं तो राधा रानी की गरिमा टिकाने के लिए भी प्रभुपाद जी उतने ही उत्सुक थे। एक बार दक्षिण भारत में कोई कह रहा था कि प्रभुपाद जी हमको थोड़ा रासलीला सुनाइए, तो प्रभुपाद जी बोले नहीं आप अभी पात्र नहीं है। तो थोड़ी देर बाद वो जो यजमान था वापस बोलने लगा, हमको रासलीला के बारे में थोड़ा सा बतलाइए। तो प्रभुपाद जी ने इस बार कहा आप पात्र होंगे लेकिन मैं पात्र नहीं हूँ। तो इस प्रकार से ये दूसरी एक घटना है जहाँ से हमको पता चलता है कि कितने प्रभुपाद जी गंभीर थे इस विषय के बारे में। और तीसरी घटना एक जो राधा कुंड में एक बार नए नए भक्त थे और उतना उनको विशेष मालूम नहीं था राधा कुंड का महिमा, तो वो राधा कुंड में तैरने की जो प्रतियोगिता चालू की उन्होंने, जर्मनी वर्सेस अमेरिका ओलंपिक्स। तो प्रभुपाद जी को किसी ने जाकर बतलाया कि प्रभुपाद जी देखो देखो ऐसे कुछ शिष्य राधा कुंड में तैरने की प्रतियोगिता कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने को बहुत बड़ा धक्का लगा। प्रभुपाद जी ने बोला क्या, राधा कुंड को तो हमको चरण से भी स्पर्श नहीं करना चाहिए, इतना वो महान है। कहने का अर्थ ऐसा है, प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में, जैसे आप उपदेशामृत पढ़ेंगे उसमें प्रभुपाद लिखते हैं कोई भी गंभीर भक्त है उसको जितनी बार हो सके राधा कुंड में स्नान करना चाहिए, और यहाँ पे कह रहे हैं अपने चरण से भी चरण का स्पर्श भी नहीं करना चाहिए राधा कुंड को, तो इसका सामंजस्य कैसे होगा। हाँ पात्रता, हाँ यानी कि पूर्ण गंभीर भाव से गंभीर रूप से केवल प्रार्थना करने के लिए ही हम वो तट पे पहुँचना है, प्रार्थना करने के लिए ही स्नान करना है और प्रार्थना के युक्त होकर ही बाहर निकलना है, ये प्रभुपाद जी का कहने का तात्पर्य है। तो ये शुरुआत इससे करके ताकि हम प्रभुपाद जी के शिक्षा के रूप से हम राधा रानी का तत्व समझ सकें। तो राधा रानी का तत्व समझने पहले कृष्ण का तत्व समझना आवश्यक होगा, तो ये मेरे पीछे आप दोहरा सकते हैं, एते चाशकला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। तो कह रहे एते चाशकला पुंसा, जो तीसरे स्कंद में, पहले स्कंद में तीसरे अध्याय में सारे अवतारों का गणन आता है, उसमें कह रहे हैं कि ये सारे अवतार जो हमने कहे, राम नृसिंह वराह मत्स्य कल्कि बुद्ध, ये सब क्या है, पुंसा कला अंश कला, ये सब अंश कला है, लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, लेकिन कृष्ण तो स्वयं भगवान है। तो उदाहरण कह रहे हैं अंश और कला, ये शब्द आपने कहाँ कहाँ सुना होगा, किस वस्तु के संबंध में सुना है अंश कला, किस वस्तु के संबंध में, हमने पूर्णचंद्र के, महाभगवत प्रभु कह रहे हैं पूर्णचंद्र के इस वस्तु के संबंध में हम अंश और कला, प्रथमा का, द्वितीया का चंद्र, तृतीया का चंद्र, एकादशी का चंद्र, अष्टमी का चंद्र, आज राधाष्टमी है, अष्टमी का चंद्र और पूर्णचंद्र, तो ये पूर्णचंद्र का ही कभी कभी अपने लीला के अनुसार जब अंश रूप में शक्ति प्रकाशित करते हैं तो उसको अंश और कला कहते हैं, और जब ये पूर्ण रूप में प्रकाश करते हैं तो उसको स्वयं रूप कहते हैं। तो ये स्वयं रूप माने भगवान का जो स्वयं रूप है वो ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है, और वो कृष्ण की तीन स्वाभाविक शक्तियां हैं. क्या है? कृष्णेर स्वाभाविक तीन शक्ति परिणति, चित शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति. चित शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति. तो स्वाभाविक रूप से कृष्ण की तीन शक्तियां हैं. चित शक्ति है जिससे आध्यात्मिक जगत, आध्यात्मिक नाते संबंध, आध्यात्मिक आदान प्रदान, आध्यात्मिक नित्य पार्षद भगवान के, राधा रानी, ललिता, विशाखा, यशोदा, नंद महाराज, वृषभानु, कीर्तिदा एवं श्रीदामा, सुदामा, रक्तक, पत्रक, यमुना नदी, जो भी स्थावर जंगम वृंदावन का है वो सब चित शक्ति से बना हुआ है. फिर जीव शक्ति, वो चित शक्ति को अंतरंगा शक्ति भी कहते हैं. और ये जीव शक्ति यानी तटस्था शक्ति, माने हम सब. तो और इनके पास सदैव चयन करने का स्वातंत्र्य रहता है कि आपको आध्यात्मिक जो नित्य पार्षद है तो वो तो उनका कभी ऐसा होगा नहीं, ये तो असंभव है कि वो कृष्ण छोड़ के किसी और चीज़ का चयन करें. लेकिन जीव शक्ति के पास ये स्वतंत्रता होती है कि हमको अप्रेंटिसशिप किसके अंडर करनी है, दैवी शक्ति के अंडर करनी है, राधा रानी के अंडर, या माया शक्ति के अंडर करनी है. तो जैसे अप्रेंटिसशिप करेंगे वैसी डिग्री प्राप्त होगी. तो जिस तो एक है तो बहुत क्रूर है, एक जो इंचार्ज है अत्यंत क्रूर है, माया जिसको कहते हैं, और वो क्या करती है, अपनी दो शक्तियों के द्वारा, प्रक्षेपात्मिका और आवरणात्मिका शक्ति के द्वारा हमको ये बतलाती है कि कृष्ण छोड़ के और कुछ महत्वपूर्ण है, और दूसरा कि यही हमारा जीवन है. एक है प्रक्षेपात्मिका, प्रक्षेप कर देती है हमको भौतिक वस्तुओं में, और आवरणात्मिका वापस बाहर निकलने भी नहीं देती. इसलिए भागवत में इस भौतिक जगत को वर्णन नारद मुनि कैसे करते हैं, वेला कुलांत वेगिताम, वेला कुलांत, ये नदी जो है भौतिक नदी, भौतिक जगत रूप नदी जो है, वेला कुलांत वेगिताम. आप नदी के तट पर कभी गए हैं, आपने नदी का प्रवाह बीच में तेज रहता है या तट में, तट के ऊपर तेज रहता है? बीच में तेज रहता है. लेकिन ये भौतिक जगत की अद्भुत नदी है जो तट पे तेज रहती है. किनारे पे जैसे जाएंगे प्रवाह बहुत तेज हो जाता है, और अंदर उतना तेज नहीं है. माने क्या, भौतिक जगत के अगर बीचों बीच फंसे हुए हैं तो ऐसे ही बहते जाएंगे, कोई चिंता नहीं है. लेकिन अगर बाहर आने की कोशिश करेंगे तो वेला कुलांत वेगिताम, हाँ, बाहर इतनी आसानी से आने नहीं देंगे. तो ये माया शक्ति तीसरी जो है, माया शक्ति यानी बहिरंगा शक्ति है. तो जीव को चाहिए कि वो अपने भगवत दत्त बुद्धि का प्रयोग करके और आचार्यों ने दिए हुए मार्गदर्शन का स्वीकार करते हुए कृष्ण शक्ति यानी राधा रानी के ही चरणों का आश्रय स्वीकार करें. तब जाके कृष्ण का जो हमारा ध्येय है, जैव धर्म है, कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त होगा. तो आगे उस कृष्ण की, राधा रानी जो चित शक्ति है उसका भी, जो लादिनी शक्ति, जो चित शक्ति का भी सार है और लादिनी शक्ति का भी सार है महाभाव, और वो महाभाव स्वरूपा साक्षात राधा रानी है. तो आगे कह रहे हैं ये चैतन्य चरितामृत से, अवतारी कृष्ण ये छे करे अवतार, अंशिनी राधा है ते तीनो गणेर विस्तार. तो कृष्ण जैसे सारे अवतारों के अवतारी हैं, मूल अवतार हैं, मूल अवतारी हैं, मूल स्वयं है, उनसे ही सारे अवतार आ चुके हैं, स्वयं भगवान है. वैसे राधा रानी कौन है, अंशिनी है. यानी कृष्ण जब भी द्वारकाधीश कृष्ण में विस्तारित होते हैं तो राधा रानी किस में विस्तारित हो जाती है, रुक्मिणी, सत्यभामा, इनमें विस्तारित होती है. कृष्ण जब भी रामचंद्र में विस्तारित होते हैं तो राधा रानी किन में विस्तारित होती है, सीता देवी. तो इस प्रकार से जब कृष्ण जब नारायण रूप में विस्तार होते हैं, उनका उनका ऐश्वर्य विलास रूप जो है, तो राधा रानी लक्ष्मी देवी के रूप में विस्तारित होती है. कृष्ण जब भी वराह रूप में विस्तारित होते तो राधा रानी भूदेवी के रूप में विस्तारित होते हैं। तो इससे हम समझ सकते हैं कि राधा रानी भी जैसे कृष्ण सारे अवतारों के अवतारी हैं, राधा रानी सारे जो कांतागण हैं उनकी मूल है। गोविंद आनंदिनी राधा गोविंद मोहिनी गोविंद सर्वस्व सर्व कांता शिरोमणि। तो हमने देखा कि गोविंद को आनंद प्रदान करने वाली राधा रानी गोविंद को केवल आनंद नहीं प्रदान करती, गोविंद मोहिनी यानी कि रूप गोस्वामी बतलाते हैं कि कभी कभी राधा रानी के रूप को ध्यान करते हुए कृष्ण अपनी मुरली बजा रहे हैं और मुरली हाथ से गिर रही है और उन केवल हवा को फूंक रहे हो, और ये भी नहीं पता उनको कि अरे मुरली गिर गई है, ध्वनि भी नहीं आ रही है। तो ये राधा रानी उनको मोहित कर देती है, पूर्ण तरीके से अपने प्रेम से वश कर देती है। गोविंद सर्वस्व सर्व कांता शिरोमणि, कृष्ण के लिए सर्वस्व है और कृष्ण के सारी कांताओं में शिरोमणि है। तयोरपि उभयोर मध्ये राधिका सर्वथाधिका महाभाव स्वरूपेयम गुणे रतिवरीयसी। तो कह रहे हैं सारे गोपियों में राधा रानी और चंद्रावली दो नायिका सर्वश्रेष्ठ है, उनमें भी राधा रानी सबसे श्रेष्ठ है। तो दोनों के आपस के बीच का संबंध के बारे में बतलाएं राधा कृष्ण के। राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्ति मान दुई वस्तु भेद नाई शास्त्रेर प्रमाण। तो राधा रानी पूर्ण शक्ति है और कृष्ण पूर्ण शक्तिमान है, दोनों में कुछ भेद नहीं है, यह शास्त्र का प्रमाण है। तो उदाहरण समझाने के लिए हमको बतलाते हैं मृग मद तार गंध यैछे अविच्छेद अग्नि ज्वाला ते यैछे कभू नाही भेद। तो उदाहरण समझा रहे हैं मृग मद तार गंध यानी कस्तूरी मस्क जो होता है कस्तूरी और उसका गंध एक दूसरे से अलग कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो वो कस्तूरी नहीं रहेगी। और अग्नि ज्वालाते यैछे कभू नहे भेद, अग्नि और उसका जो ज्वालाएं दिख रही हैं क्या उनको अलग किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। ऐसे राधा कृष्ण को अलग नहीं किया जा सकता। ये अपने श्रील बलदेव विद्याभूषण भी सुनाते हैं किनको, जब ये रामानंदी जयपुर के राजा को बतला रहे थे कि अरे ये राधा रानी को गोविंद के साथ क्यों आप पूजा कर रहे हो, इसका तो कोई प्रमाण नहीं है, इसका कुछ वो नहीं है। हाँ तो बलदेव विद्याभूषण सब शास्त्रों से प्रमाण इकट्ठा करके बतलाए, देखो रुक परिशिष्ट में लिखा है राधिका माधवेन माधवा राधिका राधिकया। तो ऋग्वेद में लिखा है और गोपाल तापनी उपनिषद में लिखा है, आप कैसे बोलते हो ये प्रमाण नहीं है? असल में उनका कारण प्रमाण का नहीं था, उनको लग रहा था कि ये राजा जो है वो थोड़ा गौड़िया बन गया तो हमारे पेट का क्या होगा। तो इसलिए वो सिद्धांत की बात नहीं चल रही थी इधर, असली कारण था कि हमारा महत्व कम हो जाएगा। तो ये सांप्रदायिकता की बात थी, वैसे तो सारे वैष्णवों को एक दूसरे संप्रदाय के प्रति आदर भाव रखना चाहिए। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि अगर कोई वैष्णव दूसरे वैष्णव को कम समझता है तो ये अग्नि दैत्य नाम का राक्षस उसको क्या कर रहा है, निगल रहा है। तो ऐसी भूमिका किसी भी शुद्ध वैष्णव की नहीं होती। दूसरा कोई दूसरे भगवत स्वरूप को पूजा कर रहा है तो वो उससे प्रेरणा लेता है, ऐसा नहीं कि उसको कम समझता है, मैं आपसे कैसे बड़ा हूँ ये सिद्ध करने का प्रयास करता है। तो बलदेव विद्याभूषण बताते हैं कि राधा रानी स्वीय शक्ति है जैसे अग्नि और अग्नि की ज्वाला, और इस प्रकार से ये हम तत्व के बारे में समझे। अभी थोड़ा राधा रानी का कृष्ण के प्रति प्रेम कैसे अप्राकृत है उसके बारे में थोड़ा समझेंगे और उसके बाद कुछ लीलाओं की चर्चा करेंगे। तो ये सब हम जो अभी बतलाएं वो सब चैतन्य चरितामृत आदि लीला चौथे अध्याय में से हैं। तो अगर आपको विशेष जिज्ञासा है तो चौथा अध्याय जो है आदि लीला का उसका अभ्यास कर सकते हैं। तो उसमें से ये 8 पॉइंट हमने लिए हैं, ये चार ये गोपी गोपियों के प्रेम की महिमा, तो इस जगत में जो प्रेम कहलाता है वो असल में प्रेम होता ही नहीं है, पहली बात। तो प्रेम तो आध्यात्मिक जगत का ही मोनोपोली, क्या कहते हैं, एकाधिकार है। जो आध्यात्मिक जगत का ही एकाधिकार है प्रेम जो है, उसका एक विकृत प्रतिबिंब इस जगत में दिखलाई देता है, और इसके लिए उसको हम प्रेम कहते हैं। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं परवर्टेड रिफ्लेक्शन, यानी विकृत प्रतिबिंब जो है बराबर उल्टा, वो प्रेम आभास रूप में दिखलाई देता है। तो काम और प्रेम में क्या अंतर है? तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तार बलि काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। तो स्वयं को संतुष्ट करने की जो इच्छा है, जो हर साधारण जीव में होती है, तो उसको कहते हैं काम, और कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम, केवल कृष्ण को ही संतुष्ट करने की जो इच्छा होती है उसको कहते हैं प्रेम। तो ये प्रेम का स्वरूप क्या है कि कृष्ण को छोड़ के अन्य सब अपर धर्मों का त्याग। इसलिए अर्जुन को भी अंत में क्या कहते हैं कृष्ण, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो इसमें माम एकम शरणम व्रज, तो इंद्र प्रभु इसको अलग एक अर्थ बताते हैं, कहते हैं कि माम एकम शरणम व्रज, मतलब अर्जुन को बतलाते हैं कि आप व्रज में जाओ और मुझे कैसे व्रज, यानी व्रज में जाकर व्रजवासी मुझे कैसे शरणागत हैं वो देख कर आओ। और उसी तरीके से सर्वधर्मान परित्यज्य मुझे शरण जाना। तो ये स्वयं कृष्ण अपने मुख से इसकी पुष्टि करते हैं कि मैं गोपियों का सदैव ऋणी हूँ। आप तो मेरे लिए लोक धर्म, लज्जा, भय सब कुछ छोड़ दिए, वेद धर्म सब कुछ छोड़कर आपने मेरा आराधन किया, लेकिन मैं तो ये सब नहीं कर सकता, इसके लिए मुझे नया अलग से अवतार लेना पड़ेगा। कौन सा अवतार? चैतन्य महाप्रभु का अवतार, जिसमें वो सब छोड़कर जैसे गोपियों ने कृष्ण के प्रति दिखाया, वैसे चैतन्य महाप्रभु ने त्यक्त्वा सुदुस्तेज सुरेपसित राज लक्ष्मीम धर्मिष्ठ आर्य वचसा य गदा अगाध अरण्यम माया मृगम दैत येपसित मन्व धावत वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। तो इस प्रकार कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि मैं तो कुछ ऋण चुका नहीं सकता। तो वैदिक संस्कृति में अगर आप ऋण चुका नहीं सकते तो क्या करना पड़ता है? मान लिया आपने किसी का ऋण ले लिया, और मान लो वो ब्याज के कारण बढ़ रहा है, और हम अगर उसको चुकता नहीं कर पाए तो क्या करना पड़ेगा? हाँ, और एक लेकिन उस जन्म में क्या करना पड़ेगा? दास बनना पड़ेगा, बराबर। तो स्वयं को बेचना पड़ेगा कि अरे मैं तो कुछ दे नहीं सकता आपको, आपका मैं अभी, आप मुझे नौकरी पे रखिए या जो भी कर लीजिए, और अपना ऋण जो है चुका लीजिए। तो इस प्रकार कृष्ण अपने भक्तों के वश हो जाते हैं, उनके दास बन जाते हैं। तो ऋणी मानते हैं, इसलिए द्रौपदी के भी भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं, कृष्ण स्वयं अपने मुख से कहते हैं कि द्रौपदी ने एक बार मेरा जो नाम लिया, हे कृष्ण हे मुरारी करके, तो कह रहे उसका ब्याज इतना मेरे सर पे बढ़ रहा है, वो तो तभी चुकता नहीं कर पाया मैं, तो इसकी वजह से अभी मुझे विकृत होना पड़ेगा, यानी कि बेचना पड़ेगा द्रौपदी को। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अरे द्रौपदी को बिक गए मतलब बाकी अभी भक्त क्या करेंगे अभी। तो कह रहे कि आत्मानमपि उपचयापचयो न यस्य, तो कह रहे हैं कि कृष्ण स्वयं को बेचकर भी वैसे ही रहते हैं, मतलब बाकी भक्तों के लिए, बाकी भक्तों के द्वारा बिकने के लिए वैसे ही रहते हैं। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, एक भक्त को बिक गए तो भी वैसे ही रह जाते अवशेष दूसरे भक्तों को बिकने के लिए। तो गोपियां कभी स्वयं के देह को भी सजाती है कभी, तो इसको समझना पड़ेगा, देह को भी कृष्ण का संतोष का साधन समझकर वो स्वयं को सजाती है। और कृष्ण सुख तात्पर्य, कृष्ण के सुख में ही अपने सुख को समझती है। और अगर कृष्ण की सेवा करते करते स्वयं को कुछ भाव भी आ जाए, अष्ट सात्विक विकार भी आ जाए, स्वेद, कंप, कंटक, अश्रु, पुलक, स्तंभ, लय इत्यादि अगर भाव भी आ जाए तो वो क्या करते हैं, अपने भावों को गाली देते हैं, कह रहे क्यों तुम आप इधर आए हो, निकल जाओ मेरे शरीर से, मेरी सेवा ठीक से नहीं हो रही है। तो ऐसा एक चैतन्य चरितामृत इसी अध्याय में आ रहा है वो श्लोक। और अंत में कृष्ण की मनोवांछा पूर्ण तरीके से गोपियां समझती हैं। एक लेक्चर में परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज कहते हैं, ये जन्माष्टमी क्लास था या शायद से राधाष्टमी क्लास था, उसमें कहते हैं कि कृष्ण स्वयं नहीं जान सकते उनको क्या चाहिए, उतना राधा रानी जानती है। कृष्ण को क्या प्रिय है वो कृष्ण स्वयं नहीं जानते कभी कभार या बहुत बार, और वो राधा रानी जानती है कि कृष्ण को क्या प्रिय है। तो ये गोपी प्रेम की महिमा है, और ऐसी सारी गोपियों में राधा रानी श्रेष्ठ है। से गोपीगण मध्य उत्तम आराधिका, रूपे गुणे सौभाग्ये प्रेमे सर्वाधिका, यथा राधा प्रिया विष्णु तस्या कुंडम प्रियम तथा सर्वगोपीषु सैवैका विष्णोरत्यंत वल्लभा। तो राधा रानी, यहाँ पे विष्णु कौन है, विष्णु की प्रिय बोला गया है, तो विष्णु कौन है यहाँ पे, ब्रजनंदन कृष्ण ही है, तो विष्णु नाम क्यों बतलाया गया है इधर उनका, कुछ कारण हो सकता है क्यों विष्णु नाम बतलाया है। वो एक तो कह सकते हैं सारे नाम तो कृष्ण के ही हैं, कृष्ण द्वारा ही, बलदेव जीव गोस्वामी कहते हैं कृष्ण द्वारा ही वो वितरित है सबको, वैसे तो शिव नाम, ब्रह्मा नाम, अग्नि नाम, ये सब नाम असल में कृष्ण के ही नाम है। अग्रे नयति सहा अग्नि ही, यानी कि आगे लेके जाता है वो अग्नि है, तो सबसे आगे कौन लेके जाता है, कृष्ण ही लेके जा रहे हैं, सबसे ऊपर कौन लेके जा रहे हैं, अग्नि आपको स्वर्ग तक लेके जाता है इसलिए उसको अग्नि कहते हैं, लेकिन स्वर्ग के ऊपर भी वैकुंठ है, वैकुंठ के ऊपर भी गोलोक वृंदावन है, तो सच में अग्नि कौन हो गए, कृष्ण ही हो गए अग्नि नाम तो। लेकिन फिर यहाँ पे विष्णु प्रयोग करने का की आवश्यकता क्या है, विष्णु का मूल अर्थ है ऑल परवेडिंग, यानी कि सर्वगामी, व्यापक। तो यहाँ पे किसको व्याप रहे हैं, कृष्ण राधा रानी के अंतर बाह्य को व्याप रहे हैं, इसलिए विष्णु कह रहे हैं उनको। राधा रानी के अंदर भी सदैव कृष्ण का चिंतन होता है, और बाहर जहाँ जहाँ पे दिखते हैं कृष्ण का चिंतन होता है। जैसे महाप्रभु राधा रानी के भाव में जब भी नदी देखते थे किसको स्मरण करते थे, यमुना। जब भी पर्वत देखते थे, कोई भी पर्वत हो, आल्प्स भी हो, तो भी किसको देखेंगे गोवर्धन को ही देखेंगे। और कोई भी वन देखा तो क्या देखते थे, वृंदावन देखते थे। और कुछ बादल देखा तो क्या, कृष्ण को स्मरण करते थे। भंवर को देखा तो कृष्ण को स्मरण करते थे। तो इस प्रकार से विष्णु का अर्थ इधर व्रज वाले कृष्ण ही हैं, चतुर्भुज विष्णु नहीं है तो क्योंकि राधा रानी के अंतर बाह्य व्याप्ति करते हैं, तो व्याप्ति करते हैं इसलिए विष्णु तो एक क्लास में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम सब कौन हैं, अभी केक तो बाद में मिलेगा, पहले राधा रानी का ऑफर होगा वो बाद में महाप्रसाद के रूप में सबको मिल जाएगा लेकिन यहाँ केक रखने का कुछ एक विशेष कारण है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक रूप में हम कृष्ण के अंश हैं, कैसे बोल रहे हैं, ममय मांशो जीवलोके जीवभूता सनातना, वो तो ठीक है। एक कृष्ण के विस्तार के रूप में हम अपने को, विभिन्न अंश के रूप में अपने को कृष्ण के अंश कह सकते हैं, लेकिन और एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन चाहिए, और प्रिसाइज अचूक अगर हमको चाहिए। तो प्रभुपाद जी एक लेक्चर में कह रहे हैं हम राधा रानी के अंश हैं, क्योंकि शक्ति के अंश है ना, हम तो तटस्थ शक्ति हैं, तो वो अंश रूप में कार्य के दृष्टि से और गठन के दृष्टि से हम किनके अंश हैं, राधा रानी के अंश हैं। यानी कि जैसे मान लो कोई कृष्ण के भोग के लिए किसी ने केक बनाया हो, तो वो केक राधा रानी के समान है, और हम कौन हैं, केक के ऊपर एकदम छोटे 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 अणुरूप जो कलर स्प्रिंकल होते हैं, या जो भी रंग के कण होते हैं जिनको सुगंध भी होता है और स्वाद भी होता है, रंग भी होता है, लेकिन केक के साथ अगर नहीं रहेगा तो उसका कुछ अर्थ ही नहीं है। किधर मिट्टी में गिर के नष्ट हो जाएगा पता नहीं चलेगा, लेकिन वही केक के ऊपर रहेगा, केक के साथ रहेगा, केक का सहायक रहेगा तो कृष्ण को अधिक आस्वादन होगा। वैसे ही जीव अगर राधा रानी के चरणों का आश्रय लेकर राधा रानी को सहायता करें कृष्ण की संतुष्टि करने में, तो क्या होगा, कृष्ण का आस्वादन बढ़ेगा। वैसे तो राधा रानी संपूर्णतः समर्थ है कृष्ण को संपूर्ण आस्वाद देने के लिए, लेकिन फिर भी हमारे ऊपर परम करुणा करके, करुणा प्रेम कृपामयी राधे, करुणाम कुरुमयी करुणा भरिते सनक सनातन वर्णित चरिते, तो हमको अवसर दिया जा रहा है कि चलो आप भी केक का भाग बनो। तो अभी हम थोड़ा लीलाओं के तरफ आते हैं। तो अभी तक हमने थोड़ा सा राधा रानी तत्व के बारे में समझा, तो अभी कुछ लीलाएं हैं। जैसे हम देखते हैं कि राधा रानी जब भी विविध रूपों में राधा रानी आविर्भूत होती है, अलग अलग कल्पों में, एक कल्प में राधा रानी वृषभानु महाराज को एक ऋषि कहते हैं कि आप पूजा कीजिए, यज्ञ कीजिए, भूमि पूजन कीजिए, जमीन को जोतिए हल के साथ। तो वृषभानु महाराज जब हल के साथ जोतने लगे तो उनको सुवर्ण की एक पेटिका मिल गई और पेटिका में एक अत्यंत सुंदर कन्या उनको दिखी। तो बहुत भक्तों ने जब ये कथा सुनी श्रील प्रभुपाद जी से, तो उन्होंने कहा अरे ये तो कुछ हमको दूसरी लीलाओं के बारे में समझ में आ रहा है, ऐसा किसका जन्म हुआ था, सीता देवी का। तो प्रभुपाद जी राधा रानी का क्यों कह रहे हैं, वो तो जनक महाराज को मिली थी शिरध्वज, उनको मिली थी इस प्रकार से। तो बाद में उनको पता चला कि एक अष्टादश पुराण में, एक पुराण में इस प्रकार से आविर्भाव का भी वर्णन है राधा रानी के। तो दूसरा एक वर्णन है कि वृषभानु महाराज जब यमुना में गायत्री कर रहे थे तो एक सुवर्ण के कमल के ऊपर एक कन्या बहती आ गई और वही श्री राधा रानी थी, श्रीमती राधा रानी, और उनको उन्होंने स्वीकार किया। तीसरे कल्प भेद में और लीला भेद में कीर्तिदा और वृषभानु दोनों प्रार्थना कर रहे थे काम्यवन में, किसकी, कामेश्वर महादेव की, कि कृपया हमको कन्या रत्न प्राप्त हो जाए। तो कामेश्वर महादेव वैसे तो राधा रानी के चरणों की वे भी उपासना करते हैं, लेकिन लीला में वो एक रोल अपना भूमिका निभा रहे हैं आशीर्वाद देने का। ठीक है, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, जय श्री राधा वृंदावन बिहारी भगवान की जय। तो आपको मैं आशीर्वाद देता हूँ कि आपके घर पे कन्या रत्न प्राप्त होगा और वे स्वयं कृष्ण की कांता शिरोमणि होएंगी, ऐसा करके बतलाया। तो उसके बाद कीर्तिदा ने अपने गर्भ से राधा रानी को जन्म दिया, ये तीसरी लीला में अपने गर्भ से ही जन्म दिया। दिव्य 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 ही है, राधा रानी भी दिव्य है, कीर्तिदा भी दिव्य है, लेकिन जैसे यशोदा मैया ने कृष्ण को जन्म दिया अपने गर्भ से, वैसे ही कीर्तिदा ने भी राधा रानी को जन्म दिया अपने गर्भ से, ये तीसरे कल्प भेद में। तो उसके पश्चात वो आंखें नहीं खोल रही थी, तो जब ही उनका नामकरण समारंभ था तभी जब कृष्ण आए, तो ये भी बात जानना आवश्यक है, कृष्ण जिस श्रावण अष्टमी को जन्म लिए उसके अगले साल भाद्र अष्टमी को राधा रानी का जन्म हुआ, आविर्भाव हुआ। तो राधा रानी का नित्य आयु है 14 साल कुछ 6 मास और कृष्ण का नित्य आयु है 15 साल 6 मास। तो इस प्रकार से राधा रानी तो आंखें ही नहीं खोल रही थी और बोल भी नहीं रही थी, सुन भी नहीं रही थी। तो उसके पश्चात जब भी कृष्ण के गंध राधा रानी के नासिका को स्पर्श करती है तो गंध से सबसे प्रथम वो अपनी आंखें खोलती है और सबसे प्रथम किसका दर्शन करती है, कृष्ण का दर्शन करती है। तो लीला से हमको समझ में आता है कि हम सब साधक जीवों का कर्तव्य है कि कृष्ण छोड़ के अन्य किसी का गंध ना हो, कृष्ण छोड़ के अन्य किसी का जीवा को स्वाद ना हो और कृष्ण छोड़ के अन्य किसी का दर्शन भी ना हो। जैसे वो कुरेश जो थे, रामानुजाचार्य कह रहे थे अपनी आंखें वापस मांग लो वरदराज से, तो क्या मांगा कुरेश ने, हाँ केवल गुरु को देख पाऊँ और और आपको देख पाऊँ, भगवान को देख पाऊँ और गुरु को देख पाऊँ, बाकी तो इस दुनिया में देखने लायक है ही नहीं कुछ। तो ऐसा करके तो राधा रानी ये अपने उदाहरण से बतला रही है। और उसके पश्चात दुर्वास मुनि जो बहुत ही नोटोरियस हैं, कुप्रसिद्ध है किसके लिए, श्राप देने के लिए, गुस्सा होने के लिए, कुछ तिनका भी गिर गया तो गुस्सा हो जाते हैं, अरे मेरे सामने तिनका कैसे गिर गया। तो इस प्रकार राधा रानी जब भी बचपन में कुछ अपना क्रीड़ा साहित्य के साथ खेल रही थी तो वहाँ पे दुर्वास मुनि उपस्थित हो गए और राधा रानी कुछ भोग बना रही थी जैसे छोटी बच्चियाँ करती हैं, मिट्टी से भोग बना रही है, मिट्टी से लड्डू बना रही है, मिट्टी से खीर बना रही है इत्यादि इत्यादि। तो दुर्वास मुनि कहते हैं कि अरे लाली मुझे भी कुछ खिलाओ। तो दुर्वास मुनि को कहती हैं राधा रानी, हाँ ये तो बना है खा लो। तो दुर्वास मुनि कहते हैं अरे हाँ मेरा परिहास करती हो, तुम्हें मालूम नहीं मैं कौन हूँ। तो कीर्तिदा बहुत डर जाती है, सोचती है कि अरे इस लाडली को उसके बाप ने इतना सर पे चढ़ा के रखा है कि अभी पता नहीं इतने ऋषि का भी अपमान कर रही है, पता नहीं हमारे साथ क्या होगा, इसको शाप वगैरह दे दिया तो बहुत डर जाती है। तो राधा रानी कहते हैं हाँ आप सोच कर रहे हो खा लो। तो उसके मधुर वाणी से इतने मुग्ध हो जाते हैं दुर्वास कि वो लड्डू जैसे ही खाते हैं तो दुनिया में कोई भी ऐसा लड्डू नहीं होगा जिसका स्वाद ऐसा होगा। तो वो लड्डू खा के इतना संतुष्ट होता है, जो खीर भी है वो वास्तव की खीर बन जाती है, उसको भी ग्रहण कर लेते हैं और संतुष्ट होकर कहते हैं मैं आपको ऐसा आशीर्वाद देता हूँ, आपने बनाया हुआ सभी व्यंजन क्या होगा, अमृत के समान होगा और जो भी उसको खाएगा वो चिरायु होगा, सौंदर्यवान होगा, बलवान होगा, उसका यश चारों तरफ फैलेगा। तो सबसे पहले जब ये वार्ता किसके पास पहुंच जाती है, व्रजेश्वरी यशोदा मैया के पास पहुंच जाती है। तो कहती है अरे वाह यही तो मैं चाहती थी कि मेरा पुत्र बलवान बने, कीर्तिमान बने। तो वो पौर्णमासी को कह के कीर्तिदा को कहती है कि राधा रानी को रोज कृष्ण की का जो व्यंजन बनाने के लिए आप भेजा करो। तो यशोदा देवी तो व्रज की ईश्वरी है, उसको कौन नहीं मानेगा। और वैसे भी कीर्तिदा देवी और यशोदा मैया का सख्य है एक दूसरे के साथ। तो ये एक सुंदर लीला है, बाल्य लीला, बहुत सारी लीलाएं हैं, कुछ संक्षेप में हम चर्चा करेंगे। तो ये जो लीला है, दुर्वास को गोपियां पूछती हैं आप कौन हैं, आपके गुरु कौन है, ऐसा पूछती हैं। तो कृष्ण कहते हैं ये दुर्वास ही मेरे गुरु हैं, वो अभी आए हुए हैं, यमुना के उस पार हैं, तो बहुत ही योगी हैं वो, बहुत सारी सिद्धियाँ हैं उनके पास। तो गोपियाँ सोचती हैं अरे वाह तो हम भी उनकी थोड़ी सेवा कर लें, हमको भी कुछ प्राप्ति होगी, पुण्य की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पे लोकवत लीला कैवल्य है। तो गोपियाँ ये नहीं सोचती कि हम साक्षात लक्ष्मी की भी स्रोत हैं, वो सोचती हम तो गांव की छोरियाँ हैं और कृष्ण हमारे प्रियतम हैं, ऐसे सोचती हैं। तो वो कहती हैं कि अरे लेकिन बीच में ये यमुना है, कोई खेवैया भी नहीं मिल रहा है, कैसे उस पार जाएं हम सारे व्यंजन लेकर। तो कृष्ण कहते हैं आप उनको यमुना को कहो कि अगर कृष्ण नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं तो मार्ग दे देंगे। तो गोपियाँ कहते हैं सच में ये काम करेगा। तो कहते हैं आप कह के तो देखो। तो गोपियाँ कहती हैं कि अगर कृष्ण नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं तो आप मार्ग दे दो। तो यमुना मार्ग दे देती है। तो गोपियाँ उस पार पहुँच जाती है, दुर्वास मुनि को सारे व्यंजन खिला देती हैं और दुर्वास मुनि तृप्त होकर डकार दे देते हैं, सबको आशीर्वाद देते हैं। और तो वापस आ रहे हैं तो कह रहे हैं वापस सभी जगह नहीं दे रही है यमुना। तो कृष्ण कहते हैं आप कहो कि दुर्वास केवल शाक और मूल छोड़ के कुछ ग्रहण नहीं करते, ऐसा कहो तो यमुना मार्ग दे देगी। तो गोपियाँ कहते हैं अरे अभी तो इतना पूरा 56 भोग खाया उन्होंने, तो कह रहे हैं कि केवल शाक और मूल ग्रहण करते हैं, ऐसा कैसे। तो कहती हैं कि ठीक है आप बोल रहे तो कहते हैं। तो कहते हैं दुर्वास अगर केवल शाक और मूल ग्रहण करते हैं तो आप मार्ग दे दो। तो यमुना मार्ग दे देती हैं और आने के बाद कृष्ण को पूछती है ऐसा कैसे संभव है। तो कृष्ण कहते हैं मैं तो आत्मा राम हूँ आपके साथ, केवल मैं इसलिए आपके साथ रहता हूँ क्योंकि आपका शुद्ध प्रेम है, उसके साथ आदान प्रदान करने के लिए ही मैं आपके साथ रहता हूँ। और दुर्वास मुनि का कुछ ये 56 भोग के प्रति कुछ आकर्षण नहीं है, केवल आपको संतुष्ट करने के लिए, आपको आशीर्वाद देने के लिए उन्होंने स्वीकार किया, इसलिए वो भी केवल शाक मूल ग्रहण करते हैं, क्या समझी। तो गोपियाँ कहते हैं समझ गई। तो बोले क्या समझी। बोले कि गुरु ठग, चेला ठग और बीच में ठगड़ी सबकी मिली भगत है, कृष्ण की भी, दुर्वास की भी और यमुना की भी। तो इससे ये तत्व क्या समझ में आता है हमको, चैतन्य चरितामृत में कहा है, केवल आर शुद्ध प्रेम ऐश्वर्य न जाने, ऐश्वर्य देखिले हो निज संबंध से माने। तो केवला जो व्रजवासियों का प्रेम है, ऐश्वर्य ना जाने, वो कृष्ण के ऐश्वर्य जानते नहीं है, और अगर दिखाई भी देता है कभी, ऐश्वर्य देखिले हो निज संबंध से माने, स्वयं का कृष्ण के साथ संबंध को ही अंतिम सत्य के रूप में स्वीकार करती है वो, और बाकी सब ढक जाता है। तो ये यमुना जी का भी दर्शन कर लीजिए तो ये कुसुम सरोवर की लीला है। तो अपने पास समय पता नहीं कितना है, मेरे ख्याल से 9:30 बजे तक बोला था मुझे, आपके पास कितना समय है उसके ऊपर निर्भर है। तो ठीक है, कंटिन्यू करूँ मैं तो एक बार ऐसे हुआ था, महाराज क्लास में बोलते हैं ना, मैं चालू रखूँ, सब लोग कहते हैं हरी बोल हरी बोल, तो हमारे एक ब्रह्मचारी ने बोला क्लास में, चालू करूँ तो मैं चालू रखूँ, समय हो गया था, तो सारे श्रोताओं ने बोला नहीं अभी बस करो तो मैं प्रार्थना कर रहा था कि आप सब ऐसा ना बोले, अरे बस हो गया अभी तो ये कुसुम सरोवर की प्रेम कलह की लीला है। तो इसमें कृष्ण ये कुसुम सरोवर है, यहाँ पे कुसुम वन है, बहुत सारे सुंदर सुंदर चंपा, चमेली, जूही इत्यादि फूल यहाँ पे उत्पन्न होते हैं। तो राधा रानी उसको तोड़ने के लिए, सूर्य पूजा के लिए तोड़ने के लिए आती हैं। सूर्य पूजा तो बहाना है, ऐसी किसकी पूजा करनी है उनको कृष्ण का दर्शन करना है, तो वो तोड़ने के लिए आते हैं। तो कृष्ण उनको रोकते हैं, बोलते हैं कि ये क्या, आप कहाँ से, क्या किसका, किसकी जगह है ये, आप कैसे यहाँ पर आकर फूल तोड़ रही हैं। तो ललिता देवी की जो राधा रानी के लॉयर कौन है, ललिता देवी, और कृष्ण के लॉयर कौन है, कृष्ण के वकील है मधुमंगल। तो मधुमंगल आते हैं और ललिता देवी आती हैं, राधा रानी के साड़ी से ललिता देवी और कृष्ण के साड़ी से मधुमंगल। तो वो एक दूसरे के साथ वाद विवाद करना चालू करते हैं कि इस जगत पे स्वामित्व किसका है, पूरे वृंदावन पे। तो राधा रानी कहती हैं कि अरे तुमने कभी किसी पेड़ को कभी पानी दिया है, उल्टा तुम्हारी गायें आके सब चरके चली जाती हैं, पूरा इधर उध्वस्त कर देती हैं, उल्टा तुम टैक्स पे कर दो हमको, कि इतना सारा तुम्हारा विनाश करती है गायें, और तुम्हारा कैसे ये जगह हो गया। तो मधुमंगल कहता है अरे ये तो शास्त्र में लिखा है। तो कृष्ण पहले मधुमंगल को सावधान करते हैं, बोलते हैं कि अरे ये ललिता और बाकी गोपियाँ बहुत चतुर हैं, उनके साथ ज़्यादा वाद विवाद मत करो, नहीं तो कुछ हमको शर्मिंदा होना पड़ेगा। मधुमंगल कहते हैं अरे ये गोपियों की अकल तो गोबर के कंडे थपने के आगे नहीं जाती, मैं तो बचपन से वेद वेदांग पढ़ा हूँ, षटकर्म निपुण हूँ, और मेरे सामने इनका कुछ नहीं टिकेंगी। तो कृष्ण कहते हैं ठीक है चलो करो वाद विवाद करो। तो मधुमंगल कहते हैं शास्त्र में लिखा है, उपनिषदों में लिखा है, वृंदावन का वर्णन है कृष्ण वनम। कृष्ण वनम क्या हो गया, कृष्ण का वन, कृष्ण वन साक्षात प्रमाण श्रुतियों में दिया हुआ प्रमाण है। तो ललिता देवी कहती है कि ठीक है वो प्रमाण हो सकता है, हमारे पास हमारा प्रमाण है, रुक्मिणी द्वारवत्याम तू राधा वृंदावने वने। तो राधा रानी वृंदावन की अधीश्वरी है, राधा वृंदावने वने। तो देखो हमारे पास हमारा प्रमाण है। तो मधुमंगल कहते हैं कि देखा आप इधर उधर से सुनते हो शास्त्र तो ठीक से उसको ग्रहण नहीं कर पाते, मेरे तरह बचपन से अगर शास्त्र पढ़ा होता तो आपको शास्त्र की जो खूबियां हैं, बारकाई हैं, वो समझ में आती। जब ही श्रुति कुछ कहती है और स्मृति कुछ कहती है, उसमें श्रुति का प्रमाण का प्रभाव अधिक होता है। आपका प्रमाण स्मृति शास्त्र से है यानी पुराणों में से है, मेरा उपनिषदों में से है, श्रुति शास्त्र से है, तो उसका अधिकार अधिक है, उसका प्रभाव अधिक है, उसका बल अधिक है। तो ललिता देवी कहते हैं बटू लगता है तुमने पढ़ाई करते समय तुम्हारा ध्यान कहीं और था श्रुति शास्त्र तभी प्रभावी होता है जब तक चीजें सब निस्संदेह हो, स्पष्ट हो, यहाँ पे तो तुम्हारे प्रमाण ही अस्पष्ट है, तो उस समय स्मृति का प्रमाण ही प्रायोरिटी, प्रायोरिटी को क्या बोलते हैं, प्राधान्य लेता है. तो कहते हैं तुम्हारे रेफरेंस में कृष्णवनम, तो कृष्णवनम तो कंपाउंड है, समास, संस्कृत में समास होता है ना, उसका तो कुछ भी अर्थ किया जा सकता है. कृष्णम वनम, कृष्ण वनम भी हो सकता है. ये वृंदावन जो है वो सदैव पेड़ों से आच्छादित होने के कारण हमेशा घना अंधेरा रहता है, और अंधेरे को भी कृष्ण कहते हैं संस्कृत में. तो ये अंधेरा वन है इसलिए वो कृष्ण वन है, इसे तुम्हारा स्वामित्व कैसे सिद्ध हो गया. तो इस प्रकार लेकिन हमारा जो रेफरेंस है राधा वृंदावने वने, क्लियर रेफरेंस है, एकदम स्पष्ट है. राधा अलग है, वृंदावन अलग है, राधा रानी वृंदावन की अधिष्ठात्री है, उसमें कुछ आप इंटरप्रिटेशन तर्क कुतर्क नहीं कर सकते. तो मधुमंगल कहते हैं, कृष्ण की तरफ देखते हैं, बोलते हैं, कृष्ण मेरा लगता है गायत्री करने का समय आ गया. मुझे जाना होगा, और वैसे भी शास्त्रों में लिखा है ज्यादा वाद विवाद नहीं करना चाहिए. तो वहां से चले जाते हैं कृष्ण. तो ये कुसुम सरोवर की लीला होती है. तो ललिता देवी कहते हैं, अरे आप कह रहे हो कि आप यहाँ के अधिष्ठाता हो, तो ये तो पूरा अभी परास्त कर दिया आपको तो हमने. तो कृष्ण कहते हैं, रुको रुको, मेरे पास और एक सिद्ध करने के लिए और एक, यहाँ की अधिष्ठात्री वृंदा देवी है, और मेरा वृंदा देवी के साथ विवाह हो चुका है, तो जो पत्नी का प्रॉपर्टी जो है वो पति का प्रॉपर्टी बन जाता है, तो मैं अभी ये मेरा राज्य हो गया. तो ललिता कहती है, अच्छा ये तो वृंदा देवी तो बाजू में ही है, उसको बुला के लाते हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा. तो वृंदा देवी को बुलाया जाए. तो वृंदा देवी को बुलाते हैं और कहते हैं, अरे वृंदा, क्या इस कृष्ण के साथ तुम्हारा विवाह हो चुका है? तो वृंदा कहती है, मेरी क्या मत मारी गई है जो इसके साथ मैं विवाह करूंगी. इसका चरित्र तो देखो, पूरे वृंदावन में कोई गोप है जो इसको अपनी कन्या देना चाहेगा? तो इसलिए वो मारा मारा घूमता है, कभी अपने मैया के पीछे पड़ता है, कभी अपने बाबा के पीछे पड़ता है, मेरा विवाह करा दो करा दो, और अभी हो नहीं रहा है इसलिए अपनी मनगणन कहानियां बना के आपको सुना रहा है. तो इस प्रकार से पूर्णतः लज्जित होते हैं कृष्ण, और गोपियों की विजय होती है. असल में गोपियों को संतुष्ट देखना ही कृष्ण की संतुष्टि है. तो इस प्रकार से ये कृष्ण सारी लीला इसलिए कर रहे हैं ताकि गोपियों को आनंद प्रदान कर सकें, और गोपियाँ इसलिए कर रहे हैं कि कृष्ण को आनंद प्रदान कर सकें. तो ये प्रेम वैचित्र्य की और एक लीला है कि जिसमें राधा रानी कृष्ण के साथ बैठी हुई है, और वहाँ पे एक भंवरा आ जाता है. ये प्रेम सरोवर आप यहाँ गए होंगे, तो वो भंवरे का देखकर राधा रानी डर जाती है, क्योंकि राधा रानी के चरण कमल कमल के समान है, तो कमल के ऊपर वो मंडराने का प्रयास करता है भंवरा. तो कृष्ण कहते हैं मधुमंगल को, अरे इसको थोड़ा सा एस्कॉर्ट करके आओ आप ये भंवरे को बाहर. तो मधुमंगल छड़ी लेकर उसके पीछे दौड़ता है, और दूर जाके कहता है कि मधुसूदन चला गया, अभी वापस नहीं आएगा. तो मधुसूदन भंवरे का भी नाम है, मधु का पान करने वाला, मधुसूदन कृष्ण का भी नाम है. तो राधा रानी जैसे ये सुनती है तो वो सोचती है, अरे मधुसूदन चले गए वापस नहीं आएंगे, तो कृष्ण तो बाजू में बैठे हैं, फिर भी विरह में वेदना उनको सहन नहीं की जा रही है. अपने अश्रुओं से एक तालाब बन जाते हैं वहाँ पर, और राधा रानी का इस प्रकार का प्रेम देख के कृष्ण अपने अश्रु बहाते हैं, वो दोनों अश्रु एकत्र हो जाते हैं, और क्या बन जाता है, प्रेम सरोवर बन जाता है. तो ये राधा रानी का एक ही ध्येय है अपने जीवन का, वो है कृष्ण की सेवा करना. तो वो स्वयं अपने मुख से, वैसे प्रेम का स्वभाव है कि किधर प्रकाशित ना किया जाए, तो राधा रानी कहीं प्रकाशित नहीं करती है, अत्यंत गूढ़ रूप में चैतन्य महाप्रभु केवल स्वरूप दामोदर और रामानंद राय के सामने ये भाव को प्रकाशित करते हैं, लेकिन हमारे आचार्य महत कृपा करके हमको ये सब गूढ़ भाव समझा रहे हैं, क्योंकि प्रेम का रूप विश्वनाथ चौधरी ठाकुर समझाते हैं, स्वरूप कैसा है, दिए की तरह है, जितना गुप्त रखा जाए हृदय के भीतर कक्ष में उतना वो स्थिर होगा, और जितना उसको एडवर्टाइज किया जाए बाहर लाके, देखो देखो मेरा कृष्ण के प्रति कितना प्रेम है, तो क्या होगा, हवा से बुझ जाएगा, या तो उसका ज्योत कम हो जाएगा, तो लेकिन कभी कभी क्या होता है, प्रेम कभी उभर कर बाहर आता है तो उसको राधा रानी भी नहीं रोक पाती, वो उनके उद्गार के रूप में प्रकाशित हो जाता है। तो वो श्लोक है, आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टु माम अदर्शनान मर्महताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु स एव नापरः। तो इस श्लोक के ऊपर कुछ हमने कुछ पंक्तियाँ लिखने का प्रयास किया है, तो आपकी अनुमति से हम प्रयास करेंगे, आपको आशा करता हूँ पसंद आए। ओ सखियों मेरे मन की बात जरा तुम सुन लेना, ओ सखियों मेरे मन की बात जरा तुम सुन लेना। तो ये राधा रानी अपनी सखियों को कह रही है, तो कृष्ण उनकी उपेक्षा कर रहे हैं, उनको उनके विरह में है। तो सखिया कह रही है कि ये चैतन्य चरितामृत का अंतिम अध्याय है कि आप उनको भूल जाओ, कितना कितना आप उनके बारे में सोचोगे। तो राधा रानी कहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए हम कृष्ण को नहीं छोड़ेंगे। ओ सखियों मेरे मन की बात जरा तुम सुन लेना, ओ सखियों मेरे मन की बात जरा तुम सुन लेना। चाहे मुझको रुलाए, चाहे मुझको रुलाए, चाहे मन को रिझाए, ओ श्याम की मुरली छोड़ के और मुझे कुछ नहीं सुनना। ओ सखियों मेरे मन की बात जरा तुम सुन लेना, तो कह रहे हैं शाम की मुरली कभी सुनकर कभी रोना भी आ जाए दुख से, या कभी मन को रिझाया भी जाए, तो भी उनकी मुरली छोड़ के और हमको कुछ नहीं सुनना है। भले लोग गाली दे दे या प्रेम से पगली कह दे, ओ कृष्णा श्याम मुरारी छोड़ मुझे कुछ नहीं सुनना। नहीं, ओ कृष्णा श्याम मुरारी छोड़ मुझे कुछ नहीं कहना। जो मेरे मुख से कृष्ण का नाम सुनकर चाहे भले लोग गाली देंगे या प्रेम से कह देंगे अरे तो पगली हो चुकी है, लेकिन कृष्ण श्याम मुरारी ये नाम छोड़कर मुझे कुछ नहीं और कुछ नहीं कहना। तो आज सुबह भी हमने देखा होगा राधा रानी के जो वस्त्र पहने हुए थे उस पर कृष्ण के नाम थे, आप मंगल आरती को थे, वापस कभी फोटो में देख लेना, गोपाल गिरधारी मुरारी गोपीनाथ ये सब नाम लिखे हुए हैं। तो वो नाम छोड़ के और मुझे कुछ नहीं करना। सर्वम भट्टाचार्य भी कहते हैं परिवदतु जना जनो यथा तथा वा ननु मुखरो न वयम विचार्यमाणः हरिरस मदिरा मदाति मत्ता भुवि विलुठामा नटामः निर्विशामः। कह रहे कि सर्वम भट्टाचार्य अपने श्लोक में कह रहे हैं परिवदतु जनो यथा तथा वा, हम कृष्ण की भक्ति कर रहे वो देखकर चाहे बाहर की दुनिया वाले हमको कुछ भी कहे, ननु मुखरो वयम न विचार्य माना, हम उसका विचार नहीं करेंगे। तो कह रहे हैं कि हम हरी रस मदिरा को ही पान करेंगे, और वो मदिरा पान करके क्या करते लोग, लोटपोट हो जाते हैं जमीन पे, वैसे हम जमीन पे लोटपोट। नटाम भूई विलुठामहा नटामहा निर्विशामहा। तो बाहर के लोग तो दारू पी के लोटपोट हो रहे हैं, तो हम हरी रस मदिरा पी के क्यों ना लोटपोट हो जाए। सड़क पर कांटे चुभे या कोमल कलिया चूमे, ओ ब्रज की कुंज गलिन को छोड़ मुझे कहीं नहीं जाना। ओ सखियों मेरे मन की बात जरा तुम सुन लेना। चाहे तो गले लगाए या पैरों से ठुकराए, ओ श्याम के सुख संतोष को छोड़ मुझे कुछ नहीं करना। ओ सखियों मेरे मन की बात जरा तुम सुन लेना। चाहे घर वाले भगाए या चाहे त्रिभुवन गुण गाए, चाहे घर वाले भगाए चाहे त्रिभुवन गुण गाए, ओ श्याम के दासी पद को छोड़ मुझे कुछ नहीं पाना। ओ सखियों मेरे मन की बात जरा तुम सुन लेना। श्रीमती राधा रानी की जय। तो तो कह रही है कि कृष्ण को मिलने के लिए चाहे सड़क पे कांटे चुभे या कोमल कलियां पैर को चुभे, मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमको तो कृष्ण की सेवा करनी है। और कृष्ण चाहे हमको गले लगाए या पैरों से ठुकराए, ताकि कृष्ण फिर भी कृष्ण के सुख संतोष को छोड़ हमको और कुछ नहीं करना। कृष्ण मोर जीवन कृष्ण मोर प्राणधन कृष्ण मोर प्राणेर पराण, हृदय ऊपर धरो सेवा करी सुखी करो ए मोर सदाकार ध्यान। तो कह रहे हैं कि सदैव मेरा ध्यान क्या रहता है, हृदय के ऊपर कृष्ण के चरण रखकर सदैव उनको सुखी करें, ऐसे ही हमारा ध्यान रहता है, ऐसा राधा रानी कहती है। और चाहे हमारी दुष्कीर्ति हो जाए कृष्ण की सेवा करने के कारण, या चाहे प्रसिद्ध हो जाए हम, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक बार भवानंद प्रभु प्रभुपाद को बता रहे थे कि किसी न्यूज़पेपर ने कुछ तो बुरा भला छपा दिया भवानंद प्रभु के बारे में प्रचार करते समय, कुछ तो बंगाली न्यूज़पेपर वालों ने, तो प्रभुपाद जी को वो जाकर बता रहे हैं कि प्रभुपाद जी देखो मुझे बुरा कह रहे हैं इसमें। मैं तो प्रचार करने गया था कृष्ण भक्ति का, लेकिन पेपर वाले हमको बुरा कह रहे हैं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं अरे कृष्ण की सेवा के लिए बुरा कहें भला कहें हमको दोनों ही अच्छा ही है। ऐसा करके प्रभुपाद कहते हैं। तो बोलते हैं हमारा कर्तव्य कृष्ण की भक्ति करते रहना, और चाहे पेपर में कुछ भी छपे हमसे हमको उससे क्या। ऐसा करके प्रभुपाद कह रहे हैं। तो ये बहुत ही सुंदर श्लोक है राधा रानी का, कृष्ण के प्रति जो प्रेम है किस प्रकार व्यक्त होता है। तो ये रूप गोस्वामी स्तवावली में कहते हैं, तो इसको बस मैं कह के सुनाता हूँ। कुर्वति किल कोकिल कुले उज्ज्वल कलनादम, जैमिनिरिति जैमिनिरिति जल्पति सविषादम, माधव घोरे वियोग तमसी निपपात राधा, विदुर मलिन मूर्ति राधिका मधिरूढ़ बाधा नील नलिन माल्य महावीक्ष पुलक वीता गरुड गरुड गरुडेत्यभिरौति परम भीता लंबित मृग नाभिम गुरु करदम मनुदीना ध्यायति शिति कंठमपि सनातम अनुलीना। क्या कह रहे हैं रूप गोस्वामी? ये उद्धव जी को जब कृष्ण भेजते हैं मथुरा से राधा रानी और सारी गोपियां और सारे व्रजवासी उनको सांत्वना करने के लिए, उद्धव उधर पहुंचते हैं, उनकी विरह की दशा देखकर स्तिमित हो जाते हैं और वापस आके ये सारी वार्ता सुना रहे हैं कृष्ण को। तो ये राधा रानी की कृष्ण के विरह में क्या वार्ता है वो कह रहे हैं। कुर्वती किल कोकिल कुले उज्ज्वल कलनादम, ये राधा रानी ये ध्रुवपद पहले देखते हैं। माधव घोरे वियोग तमसी निपपात राधा, हे माधव हे कृष्ण, वियोग के अंधकार में राधा रानी गिर चुकी है। विधुर मलिन मूर्ति अधिकम अधिरूढ़ बाधा, और उनकी बाधा उनको सहन नहीं हो रही है उनको। और कैसे, तीन उदाहरण दे रहे हैं इधर। जबी जबी राधा रानी कोकिल, अभी कोयल कितनी सुंदर गाती है ना, तो जबी कोयल इतना मधुर गा रही है, राधा रानी क्या करती है, डर के मारे जय मिनी जय मिनी जय मिनी ऐसा गाती है। जय मिनी रीति जलपति सविषादम, विषाद से। क्यों? कोकिल के सुर उसको कृष्ण के विरह में वज्रपात के समान लग रहे हैं। जैसे बिजली कड़ाड़ती है ना, कितनी कठोर कड़ाड़ती है, डर लगता है। तो वैसे जब कोयल या गाने लगती है तो कृष्ण के विरह में राधा रानी को लगता है कि कुछ बिजली कड़ाड़ रही है। तो जय मिनी करके क्यों चिल्ला रही है? क्योंकि अपने शास्त्रों में लिखा है ये पांच ऋषियों के में से किसी का भी नाम लिया जाए तो वज्रपात या अग्नि से रक्षण होता है। तो एक कल्याण मित्र जैमिनी वैशंपायन पुलह पुलस्त्य, ये पांच में से किसी का ऋषि का नाम लें अगर तो वज्रपात से बचेंगे, अगर बिजलियाँ कड़ाड़ रही है। ऑफकोर्स हमको तो हरे कृष्ण ही जपना है लेकिन ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। कल्याण मित्र ये भी एक साधु हैं, कल्याण मित्र जैमिनी पुलह पुलस्त्य और वैशंपायन। तो राधा रानी जैमिनी ऐसा आक्रोश करती है कि अरे वज्रपात ना हो हमारे सर पे, हो रहा है कोयलों का सुंदर गान हो रहा है लेकिन लग रहा है वज्रपात के समान। फिर आगे कहते हैं, नील नलिन माल्य मह वीक्ष पुलक वीता गरुड 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 इत्यभिरौति परम भीता। नील नलिन, नील कमलों के सुगंधी माला को जब देखती है राधा रानी तो भय से रोमांचित हो जाती है और किसका स्मरण करती है, गरुड गरुड गरुड। क्यों, उसको क्या लग रहा है, हाँ उसको लग रहा है कोई जहरीला नाग है ये, यानी जो पुष्प की माला कृष्ण के विरह में उसको जहरीले नाग की तरह प्रतीत होती है, तो नाग से बचने के लिए क्या क्या कहती है, गरुड 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 इत्यभि रहोती परम भीता, परम भीत होकर गरुड 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 ऐसा बोलते, क्योंकि गरुड गरुड नाग से बचाते हैं ना। लंबित मृग नाभिम अगरु करदम मनुदीना ध्यायति शिति कंठम अपि सनातनम अनुलीना। तो कह रहे हैं लंबित मृगनाभिम, मृगनाभि यानी कस्तूरी, अगुरु यानी जो अगुरु बत्ती बनती है ना, अगरबत्ती सुना होगा आपने, अगरबत्ती यानी उसका मूल इंग्रेडिएंट जो होता है घटक वो अगुरु ही होता है। तो ओरिजिनल जो अगुरु होता है उसको बहुत सुंदर उसका सुगंध होती है। तो जब अगुरु और कस्तूरी का मिश्रित सुगंध राधा रानी के नास में पड़ती है तो उसको लगता है ये विष की ज्वालाएं हैं, लगता है कि ये इतना विष की बाफ होती है ना, जैसे कालिया जब ही फुत्कार करता था तो विष की बाफ से क्या होता था, ऊपर पंछी उड़ने वाले पंछी भी मृत होके गिर जाते थे। तो इतना वो हलाहल के समान विष के समान उसको लगता है कि उससे उसकी बाफ से भी कोई मर जाए, तो इसलिए वो किसका स्मरण करती है, ध्यायति शिति कंठम अपि सनातनम अनुलीना। किसका स्मरण कर रही है, शिति कंठ कौन है, हाँ शिव जी, वो क्यों उनका क्यों स्मरण कर रही है, हलाहल विष का पान किया था ना तो वो विष से बचने के लिए शिव जी को स्मरण कर रही है। हाँ वज्रपात, कोयल का सुर सुनती है तो वज्रपात स्मरण होता है उनका और जयमिनी का नाम लेती है। वो माला सुंदर माला देखती है तो जहरीला नाग स्मरण आता है तो उससे वो गरुड़ का नाम लेती है, और यहाँ पे अगुरु का सुगंध आ जाए तो शिव जी को ध्यान कर रही है, शिव जी हमको बचाओ। तो इसलिए कृष्ण विरह में संपूर्ण अनुलीना, कृष्ण में ही पूर्ण उनका स्मरण ध्यान सब कुछ उनमें मग्न है। तो इसलिए जो इंद्रियों को तृप्ति करना करने वाले जो व्यंजन है वही प्राणघातक अनुभव हो रहे हैं। तो ये कुछ लीलाएं हैं जिनमें हम देखते हैं कि राधा रानी कैसे रघुनाथ दास गोस्वामी धूप में बैठकर हरे कृष्ण जप रहे हैं और अपने लिए कुटीर भी नहीं बना रहे हैं। तो राधा रानी के लिए कष्ट करने के लिए भक्त तैयार हैं और भक्तों को कष्ट मिटाने के लिए राधा रानी अपना पल्लू क्या करती हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी के सर पर रखती है, रखकर उसको छाया देती है, स्वयं धूप में पानी पानी हो रही है। स्वयं तो ऐसा कहते हैं कि राधा रानी जो नवनीत की पुतली है उससे भी नाजुक है। नवनीत यानी मक्खन आपने देखा होगा तो वो कितना तरल होता है, वैसे राधा रानी है, लेकिन फिर भी धूप में रघुनाथ दास गोस्वामी को मदद कर रही है, उसका क्लेश दूर कर रही है। ये छोटी लीला है। तो एक राधा गोविंद मंदिर आपने जयपुर में देखा होगा, तो ये राधा गोविंद देव हैं, तो राधा रानी की कृपा इससे हमको पता चलती है। तो राधा गोविंद के पुजारी थे और उनको थोड़े बूढ़े हो गए थे, तो अभी हाथ नहीं चल रहा था उठाने के लिए वो जो फूल पात्र उठाने के लिए, तो उन्होंने अपने जो नवीन जो सेवक है उसको ये सेवा दे दी। तो राधा रानी ने सपने में आकर कहा, अरे आप ये सेवा क्यों छोड़ रहे हो, मुझे तो आपसे ही सेवा प्राप्त करनी है। तो दूसरे दिन वो इनको कहते हैं जो नए उनके सहायक है, आप मत करो आज मैं कर लेता हूँ। तो वो पूजा करना चालू करते हैं और जब भी भोग लगाते हैं तो बाहर आके उनका नित्य नियम होता है, बाहर आके रूप गोस्वामी का गोविंद विरुदावली और चाटू पुष्पांजलि पढ़ते हैं। चाटू यानी प्रशंसा, पुष्पांजलि यानी पुष्प की अर्पण करते ना, वैशा पुष्पांजलि। तो वो राधा रानी का गुणगान करने वाला चाटू पुष्पांजलि करके एक स्तोत्र है, तो बाहर आके स्तोत्र पढ़ते हैं और अपने नियम के हिसाब से वापस अंदर जाके भगवान के चरणों में वो अर्पण करने जाते हैं। तो क्या होता है, गोविंद देव उनका हाथ पकड़ लेते, बोलते हो गया आपका, चलो अभी सेवा सिद्ध हो गया, अभी आध्यात्मिक जगत में आकर सेवा करो। तो इस प्रकार से राधा रानी इतनी कृपालु हैं कि वो अपने भक्तों से सेवा चाहती हैं, क्योंकि भक्तों का उनके प्रति अत्यंत प्रेम है और जब भी सही वक्त आए समय आए तो अपनी साक्षात सेवा भी प्रदान कर देती है। पर ये लास्ट है, अंत में ये लीला कह के हम समाप्त करेंगे। तो विश्वनाथ चक्रधर ठाकुर हैं, तो उनको एक बार जो गायत्री मंत्र जपते हैं उसमें 24.5 अक्षर हैं और ये 24.5 अक्षर 24.5 चंद्र हैं जो कृष्ण का रूप है उसमें दिखाई देते हैं। कृष्ण के रूप में 24.5 चंद्र छुपे हुए हैं। अगली एक बार आप दर्शन करेंगे तो ये सोच के कर सकते हैं कौन से 24.5 हैं, काउंट कर सकते हैं। तो एक मुख चंद्र है जो पहला चंद्र है, दो जो गाल है भगवान के वो दो चंद्र हो गए, तीन हो गए, जो कपाल के ऊपर एक जो ये ललाट के ऊपर चंदन बिंदु है वो चौथा चंद्र है और उनका जो ललाट है वो अर्धचंद्र है, तो 4.5 हो गए। तो जो हाथों की 10 उंगलियों के 10 नाखून जो हैं वो 10 चंद्र हैं और पैर की 10 उंगलियों के 10 नाखून ये 10 और 10 चंद्र हैं, तो कितने हो गए, 24.5 हो गए। लेकिन वो मंत्र में उनको मिल नहीं रहे थे 24.5, तो मंत्र तो नहीं कहेंगे हम तो मंत्र वो मिल नहीं रहे थे, तो वो पूरी रात उनको नींद नहीं आ रही थी विश्वनाथ चक्रधर ठाकुर को कि ये कैसे कविराज गोस्वामी 24.5 चंद्र बोला, हमको तो नहीं मिल रहे। तो राधा रानी ने सपने में आकर उनकी व्यथा दूर की, राधा रानी ने सपने में आकर उनको उनके प्रश्न का उत्तर दिया कि ये 24.5 चंद्र कहाँ है और वो अर्धाक्षर किधर है, वो अर्धाक्षर नहीं मिल रहा था क्योंकि हम तो पूर्ण अक्षर ही जानते हैं ना। तो कहते हैं कि हमारे संस्कृत व्याकरण में एक अर्धाक्षर करके भी होता है, तो वो अर्धाक्षर क्या है, वो अर्धचंद्र क्या है, वो चक्रवर्ती पाद को सपने में आकर बताती है। तो दूसरे दिन सुबह उठकर राधा रानी को स्मरण करके विश्वनाथ चक्रधर ठाकुर हा राधे करके रो पड़ते हैं, कहते कि अरे मेरे लिए आपने स्वयं आकर मेरा जो समस्या का परिहार कर दिया। तो कहने का अर्थ है कि अगर हमारी जितनी उत्कंठा होगी राधा रानी के प्रति, कृष्ण के प्रति, उतने ही भगवान हमारे साथ आदान प्रदान करेंगे। तो ऐसे महान आचार्यों के चरणों के अनुगमन करके श्रील प्रभुपाद जी ने हमको सब कुछ दिया, नाम दिया, धाम दिया, भक्त दिया, भक्त दिए, और भागवतम दिया, इतने शास्त्रों का अनुवाद किया रात्रन दिन जगकर, और धाम राम धाम भागवतम, और क्या रह गया, वैष्णव सेवा, मथुरावास, साक्षात श्री विग्रह दिए सेवा करने के लिए। तो उनके चरणों का अनुगमन करके हम श्री राधा रानी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हम उनके चरणों के दासों के दासों के दास बनने का सौभाग्य हमको प्राप्त हो जाए, और कृष्ण को के अलावा हमारे जीवन का कुछ ध्येय ना हो, और सारे वैष्णवों की निर्वेलिक भाव से हम सेवा करें, और गुरु वैष्णवों के कृपा आशीर्वाद हमको प्राप्त हो जाए। श्री राधाष्टमी महामहोत्सव की, श्रीमती राधा रानी की, श्री वृंदावन बिहारी भगवान की, श्री गिरिराज महाराज की, श्री राधा मदन मोहन ललिता देवी की, श्री गौरांग महाप्रभु की, श्री वृंदावन धाम की, श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, हिताय गौर प्रमानंदे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे।